अपने जीवन से अपनी आदत को अलग नहीं कर सकते हो। तो विषयों से मन कैसे अलग कर सकते हो? बड़ा विकट, बड़ी विकट समस्या है। हम हमारे मन के व्यवहार से ही ऐसे तंग हैं, फिर भी हमारा है ना आसक्ति। मन अपना है इसलिए कोई भी अपराध करता है, कोई भी कुकर्म करता है, तब भी उसके लिए कोई सजा नहीं, उसके लिए कुछ उलाहना भी नहीं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आंख मिचो नहीं कर देते। हमारा मन हमारे लिए गलत काम कर रहा है, यदि दूसरा किसी ने किया हमारे लिए गलत काम तो उसको दो चार सुना देंगे और हमारे सामर्थ्य होगा तो दो चार चढ़ा भी देंगे। लेकिन ये तो मेरा मन है, मैं किसको सजा करूं, मैं किसको शिक्षा दूं? तो एक जीवन बन गया है ऐसा कि जैसा करता है ऐसा करने दो, चलने दो चलने दो। यही हमारी गलती, अपराध है, यही हमारे जीवन के साथ हमारी बेईमानी है, हमारे खुद की चला लेना, यही पतन है। जीवन की हर एक बात को निभा लेना, यही हमारे जीवन गलत रास्ता है। जहां पर भी गलती होगी कि ये खराब है, ये अच्छा नहीं है, वहीं रुक जाओ, वहीं सजा करने लग जाओ। सजा किसको करोगे? दो चार तमाचे से चल जाएंगे और मार सकते हो अपने अपने मन के साथ जो कुछ व्यवहार हुआ है उसका। सजा नहीं करोगे, बस जब सजा ही नहीं करते हैं तो वो निर्भय हो जाएगा, हमें क्या होने वाला है, चाहे कैसे हल्के से हल्का काम करता कर दूंगा, मुझे मेरे मन को मैं कौन सजा करेगा? सजा करने वाले हैं शरीर ही, वो मन की सजा देने वाला है। जैसी गलतियां करेगा व्यवहार में, ऐसी आपत्ति उसको आ पड़ेगी। मन कोई भी, चाहे बोलने में, चाहे करने में, चाहे सुनने में, चाहे देखने में गलती करेगा तो शरीर से उसका प्रतिभाव मिलेगा, उसका जवाब प्रत्युत्तर मिलेगा, ले ऐसा किया था ना, मन चाहा, कोई चीज खूब अच्छी लगी, खूब खाई, खाकर बीमार हुए, उल्टी हो गई, मन को तो अच्छा लगा था, खा लो दूध पाक बड़ा अच्छा है ठंडी के दिन में, लेकिन खाने के बाद पता चला कि तो पेट बिगड़ा, उल्टी हो गई, बीमार हो गई। तो अपराध गलती की किसने? मन ने। सजा किसने दी? शरीर। तो मन की गलतियां की सजा अवश्य, कोई भी गलती करो चाहे गुप्त से गुप्त हो करके छुप के करो, लेकिन वो गलती की सजा शरीर देगा ही। आज नहीं देगा तो समय आने पर उसकी सजा मिलेगी, कहीं नहीं जा सकते। मन से अपनी कोई बात छुपी नहीं रहती, शरीर में कुछ भी होता है तो उसका पता मन को है कि क्यों हुआ, क्योंकि गलती की है मन ने, अपराध उसने किया है, तो सजा भी कैसी मिल रही है उसको पता चलता ही, किस अपराध के कारण क्या सजा हुई है वो मन अच्छी तरह से जानता है। इसलिए हमारा जो व्यवहार मन के अधीन और मन जो करते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक ही वाक्य में कहा जाए तो हमारा पूरा जीवन मन चाहा होता है, मन माना होता है, और मन से आगे हम आगे बढ़ नहीं पाते। हम यही मानते हैं कि मन जो सब कुछ है सो मन ही है जीवन में, लेकिन दरवाजा खोलो, दृष्टि आंख खोलो तो मन से आगे भी कुछ है। ये शरीर है, शरीर से आगे भी कोई तत्व है भरा पड़ा हुआ है, लेकिन देखने की सोचने की हमें कोई अवकाश ही नहीं, हमारे पास कोई समय ही नहीं है, हमारे पास पागल की तरह, मूर्ख की तरह जी रहे हैं, सब चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ भेड़ों की तरह, वो भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं, गति एक ही है। वो गति है, वो अंधी गति है, मन अंधा है, इंद्रियां भी लूली है। अंधा और लूला दोनों साथ होते हैं ना, तब जा करके वहां पहुंच पाते हैं जहां जो कुछ करना है। मन इंद्रियां एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके मार्ग देखते हुए वहां भोगों की तरह विषयों के तक पहुंच जाते हैं। पंगु होते हुए भी, इंद्रियां अंधी होते हुए भी मन चढ़ जाता है इंद्रियों के ऊपर, कंधे पर ले जाता है, चल ऐसे चल, ऐसे चल, वहां चल, ये देख, इसको खा, ये पकड़। जब जीवन का व्यवहार ही अंधे और लूले के साथ लेना है, एक अंधा है दूसरा लूला है, काम भी कैसे होंगे, अधूरे होंगे। स्वयं तो दुखी, अंधा भी दुखी है, वो देख नहीं सकता, इंद्रियां भी पंगु है, उसको गति नहीं है, तो अपाहिज होने के कारण वो भी अपने जीवन और में अधूरे हैं। जो अधूरा है वो कभी पूरा नहीं, कोई काम पूरा नहीं कर सकता। मन भी अधूरा है, इंद्रियां भी अधूरी है। मन को गति है लेकिन साधन नहीं, इंद्रिया के पास गति है मगर दृष्टि नहीं, मन के पास दृष्टि है। अब दृष्टि और गति दोनों इकट्ठे होकर के ही पहुंचेंगे भोगों की तरफ। ऐसे अपाहिजों से जीवन कभी पूरा नहीं हो सकता। और इसी प्रकार ही मन और इंद्रिया खंडित है तो हमारा जीवन भी ऐसा खंडित है, पूरा खंडित जीवन बीता है। और गुलाम की तरह, पशु की तरह जो मार जो सजा मन ने दिलाई वो खा ली, वो भोग ली। तो मन और विषयों से अलग कैसे हो, ये विवशता हमारे जीवन की देख रहे हैं, हमारे जीवन में भी और सबके जीवन में देख रहे हैं। और उसको अब हटाना है, उसमें से बाहर आना है, समस्या बड़ी गंभीर है। मन से विषयों को अलग कैसे करें, क्या हो सकता है, पहले तो प्रश्न ये आ जाए। जैसे हमने स्वर्ग देखा ही नहीं है, नरक देखा ही नहीं है, तो पूछेंगे क्या नरक है, क्या पाप है, क्या स्वर्ग है, क्या पुण्य है, किसी ने देखा ही नहीं। करो जी चाह, मन माना करो। तो जीवन में नहीं देखा हुआ है इसलिए हम करते हैं कि ऐसा काम करते रहो। जब मन ने नहीं देखा है इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन जो है पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक हमारे इसी जीवन में देख लो। जहां जहां पर रोग आ गया, व्याधि आ गई, शरीर में अशांति और दुख आ गया, तब समझ लो यही नरक है। और जब भी हमारे मन में शांति आई, संतोष आ गया, मानसिक तनाव हमारा हट गया, हम बैठे चैन से, न अस्पताल में जाना पड़ता है, न कोर्ट में जाना पड़ता है, तब समझ लो हम स्वर्ग में जी रहे, कोई दुख नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। जब भी, परंतु मन ऐसा ही सोचता है, किसने देखा, परिणाम ये आएगा। अपराध के सामने भय नहीं है तब वहां पर वो मुक्त हो जाता है। और अपराध एक से एक ऊपर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, आगे बढ़ता ही जाता है। पाप और अपराध की चरम सीमा जीवन में आ जाए तब तक वो करता ही रहेगा कि क्योंकि उसके पास कोई नियंत्रण नहीं है, कोई सजा नहीं है। सजा इसलिए है कि व्यक्ति समाज में और समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए, समाज व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता है। जैसे राज में कानून है, समाज में उसके नीति रीति है, ऐसे जीवन में भी पाप और पुण्य को संयम से जीवन जीने के लिए ये नियंत्रण है। जब भी हमने पाप और पुण्य हमारे विचारों से निकाल दिया, मान्यता से निकाल दिया, तब से समझ लेना कि अब जीवन में नियंत्रण कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकेगा। पाप पुण्य की व्याख्या ये है, मानसिकता यही है कि हमारे जीवन में नियंत्रण आना चाहिए, स्वच्छंद बन न जाए, दुराचारी न बन जाए। इसलिए कोई न कोई भय हमारे ऊपर, पाप का भय, ईश्वर का भय, समाज का भय, या हो सके तो शरीर से आने वाले रोगों का भय, भोगे रोग भयम, भोगोगे तो रोग आएगा, रोग को भी भोगना पड़ेगा। तो नियंत्रण ही हमारे जीवन से, हमारे जीवन को पाप से बचाता है। हम भगवान से नहीं डरते हैं कभी कभी, लेकिन लोग देख जाएंगे कि मुझे देख जाएगा मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, और जब जो देख जाएगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। इसलिए जो भगवान से नहीं डरता है वो समाज से लोगों से डरता है, समाज से डरता है, लोक दृष्टि से मैं अपमानित हो जाऊंगा, मैं निंदित हो जाऊंगा। भगवान भी अर्जुन को कहते हैं, निंदन तम तव सामर्थ्यम ततो दुख उत्तरम दुखीम। तेरे सामर्थ्य की जब निंदा होगी उससे बड़े चढ़बड़ के दूसरा दुख हो ही क्या सकता है। तो सबको भय है कि मैं निंदित हो जाऊंगा। तो भगवान से नहीं डरता, पाप से नहीं डरता हुआ व्यक्ति समाज से डरता है, क्योंकि मन ने समाज का स्वीकार कर लिया है। प्रभु के लिए उसको शंका है, क्या देखा, ईश्वर कहाँ है या नहीं, पाप और पुण्य किसने देखा। परंतु जीवन में नियंत्रण एक समाज दृष्टि, समाज की दृष्टि मेरे पर पड़ जाएगी तो मैं कितना लज्जित हो जाऊंगा, मैं कितना निंदनीय अपराधी बन जाऊंगा। तो यहाँ समाज पर भी, समाज भी एक जीवन के ऊपर नियंत्रण है, जैसे प्रभु का, पाप का, शासन का नियंत्रण है, वैसे हमारे जीवन में तो भी नियंत्रण, समाज, सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। इसलिए समाज की शक्ति भी, समाज का संगठन भी एक प्रभु की शक्ति है, वो भी भगवान है, कि जो व्यक्ति को पाप से बचाता है। जो भी पाप से बचाए वो हमारा भगवान है। क्यों, कैसे, हमारा हित किसमें है, पाप नहीं करने में। पाप होगा तो हम अपराधी हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, सजा होगी। तो पाप से बचाने वाला समाज है, सामाजिक नियंत्रण है, इसलिए हमारी सुरक्षा है समाज, इसलिए समाज भी हमारा भगवान। देखो जब भी मन और दूसरा कहीं नहीं परंतु व्यवहार का और समाज का नियंत्रण तो स्वीकारता है। जब ऐसी अवस्था में हमारा जीवन नियंत्रण हमें वहां ले जाएगा, कुछ पुण्य की तरह, और वो भी देखो पाप करते हैं, जितने पाप करते हैं बड़े सुलझ करके करते हैं, कोई भी अपराध करते हैं तो समझ बूझ करके कर रहे हैं, और कभी पुण्य हो जाता है तो ऐसे ही हो जाता है, हो गया कि जैसे लकड़े, सूखे लकड़े में एक घुन, कीड़ा होता है, वो कीड़ा अंदर खाया करता है, وہ لکڑی کو, تو اس میں لکیریں ہوتی ہیں, دیکھنا کبھی اس کا چھلکا اترے گا. وہ چلتا ہے, وہ کھاتا ہے رہتا ہے, اس میں کھانا کھانا ہے, اس کا کام ہے بس. اچھی طرح سے وہ جانتا ہے کہ میں کھا رہا, لیکن اس گھن نے اس لکڑی کے اندر کھاتے 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 اپنے آپ کہیں اوم کا آکار لکھ گیا یا کہیں رام لکھ آ گیا لکھنے. ہوئے گناچر نیائے تو پونی پرتی ہو گئی, جو گھن کا اکشر رام لکھ دیا یا اوم لکھ گیا لکڑی کو کھاتے کھاتے, تو کیا ہوا, وہ کچھ پریتن کیے بنا ہی ہو گیا, پاپ کرتے کرتے ہی ساجی پنیہ ہو گیا. کرنے چلے تھے تو پاپ ہی پاپ ہو رہا, لیکن راستے میں کوئی پیاسا ملا, بڑا بڑا پانی پانی کے بنا تڑپ رہا تھا, پانی کر رہا تھا. میں پانی لے کر کے چلا تھا لیکن پاپ کرنے کے لیے جا رہا تھا, لیکن وہ پیاسا راستے میں مل گیا, میرے پاس جو پانی تھا اس کو پلا دیا, تو پنیہ اپنے آپ پنیہ کا کاریہ تو ایسے ہی ہو گیا, پاپ کے مارگ میں پنیہ ہو گیا. جیسے گھن لکڑی کھاتے کھاتے اندر رام نام لکھ دیتا ہے, تو اس کو اس کا کچھ نہ کچھ تو پراپت ہوتا ہے, اس کی شکتی اس کا بل ملتا ہے. تو جیون میں جو پاپ ہے وہ ساہجک بنا ہوا ہے, من کی برتی بنی ہے پاپ میں, پانی کی طرح کوے کی طرح اس کو مکت کر دو. کوا ہلکی چیز پر جا کر کے بیٹھے گا, پانی کو کتنا بھی اوپر اٹھاؤ چھوڑ دیں گے تو نیچے ہی گرے گا, کیچڑی بنے گا. ایسے من بھی اس کو اچھی طرح سے سمادھی میں تتو گیان میں پربھو میں اوپر لگا دو, پھر بعد میں اس کو سوتنتر چھوڑ دو, بھٹک جائے گا, گر جائے گا, وہیں جائے گا. اس کے اوپر نینترن کی اور بندھن کی آوشیکتا ہے. تو یہ من اس کا سوبھاؤ بن چکا ہے جنم جنم کا, اور ایک کرم کرنا اس کا مانو سمجھو اس نے کرتویہ مان لیا ہے, پاپ کرنا ہے میرا کرتویہ. لیکن اس کو بیل کی طرح گھوڑے کی طرح نکیل ڈال کر کے اس کے لگام بنا کر کے اس کو صحیح ڈھنگ راستے پر چلانا ہوگا. من کو کہو نہ مانیے من ہرایو ڈھور, بنا نکیل لگائے ہوئے جو بیل ہے وہ سانڈ بن جاتا ہے. ایسے من کو بھی اس کو نکیل نہیں ڈالو اور کھول دو, اس کو کھلا رکھ دو, وہ بھی اسی پرکار ہی ہوگا. اپنی من مانا جی چاہے کرے گا وہ کبھی بھی نینترن میں سنیم میں کبھی نہیں رہ سکتا. من کو سنیم میں رکھنے کے لیے جو آگے بتایا پربھو نے, ست سنگ کی آوشیکتا ہے. جو ہمارے جیون کی سمسیا ہے کیسے چھڑائیں, ایک شراب نہیں چھوٹتا چھوٹتی ہے, ایک بیڑی یا تمباکو نہیں چھوٹتی ہے ایک بار پکڑ لینے کے بعد, تو جنم جنم کے پاپ کی برتی تو جنم جنم سے پکڑی ہوئی ہے, کیسے چھٹے گی؟ وشے اور من کو الگ کرنے چاہتے ہیں کیسے ہوگا؟ یہ چھوٹی سی چیز نہیں چھوٹتی. بالک کو کچھ کھانا دے دو چاکلیٹ, پھر اس کے پاس میں آپ نے دیے آپ مانگو اس سے پاس, اس کے پاس سے نہیں دے گا, اس کے پاس اس کے ہاتھ سے چھڑانے لینے جائیں گے تو رونے لگ جائے گا, نہیں دے گا. من بھی پکڑ لیتا ہے ایک بار, نہیں چھوڑ. اب دیکھو جو ہمارے جیون میں ہم کو دکھی کرنے والی ہے, پاپ والی ہے, کوئی بھی برتی ہے, اس کو بھی من کے پاس سے چھڑانے کے لیے جاتے ہیں تو من بڑا ویاکل ہو جاتا ہے, بڑا دکھی ہو جاتا ہے, بڑا اشانت ہو جاتا ہے. کوئی افیم کھانے والے کو یا کوئی روز بھانگ کھانے والا ہے اس کو چھڑاؤ, وہ ہاتھ پیر پچھاڑے گا, نہیں چھوٹ پائے گا, ہائے ہائے کرے گا. ایک شراب پینے والے کو چھڑا لو, روز پی رہا ہے, چھڑاؤ بے چین ہو جائے گا, تڑپے گا ایسے, اس کو جب وہ ملے گی تب وہ شانت ہوگا. اب ٹھیک, एक व्यसन नहीं छूट पाता है जीवन से, जो इसी जीवन में उसकी आदत आ गई, तभी विषय और मन दोनों का संबंध ऐसा जुड़ा हुआ है, उत्प्रोत हो गए हैं। एक दूसरे को अलग करना हो तो उसको अग्नि में तपाएंगे, बाद में उसको रिफाइनरी में डालेंगे, तब जाकर के दोनों अलग हो सकते हैं। कोई भी धातु, कोई भी चीज, दूध में पानी डाल दिए, पानी चला गया अंदर, तो उसको उबालना पड़ेगा। जब खूब खोलेगा दूध, तब पानी उड़ जाएगा और दूध रहेगा। तो जब हर एक चीज को अलग करने के लिए कुछ न कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है, तो मन के साथ भी कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे तो मानने वाला नहीं है, समझाओगे तब भी, चाहे इसको कितना भी बचाओ, कितना भी कहो, कितना भी उसको उपदेश दो, उसको सलाह दो, ये बुरा है भाई, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत रास्ता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे कुल के लिए, हमारे परिवार के, ये जो हमारी इज्जत है उसके लिए भी अच्छा नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, हमारी खानदानी की क्या धब्बा लगेगा, क्या कलंक लगेगा, सब कुछ सुनाओ फिर भी वो नहीं हटेगा, नहीं मानेगा, मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए, आप कुछ भी करो। जब मन ही ऐसे इस प्रकार जब लगा हुआ उसके साथ ओतप्रोत बन गया है, उसको अलग कर ही नहीं पाते, क्या करो, दूध में पानी है उसको तो निकाल सकते हो, लेकिन दूध में चीनी पड़ गई उसको कैसे निकालोगे। तो मन और विषय उसका संबंध ये है, दूध मीठा भी लगता है, चीनी अंदर पड़ गई है, चीनी के बिना दूध फिक्का लगता है। ऐसे मन और विषय दोनों इतने एक दूसरे से घुल मिल गए हैं, उसी का स्वाद भी उसको आता है, मन को विषयों का स्वाद आता है, नहीं छुपता, अलग भी नहीं हो पाता। तब प्रश्न तो बड़ा अच्छा किया है, लेकिन समस्या भी बड़ी भारी है कि मन से इंद्रियों से अलग करे कैसे। सोचो, अपने सबके जीवन का अनुभव ले लो उसमें से, कि क्या करेंगे तब हम ये विषयों से, पाप से छुट पाए। उसको कल देखेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण जीवन की अनुभूति हमारे लिए बता रहे हैं उद्धव जी को। उद्धव जी ने एक प्रश्न किया है, मन से विषयों को अलग कैसे किया जाए। बड़ा गहन और गंभीर चिंतन है, जो सबके जीवन में प्रत्यक्ष है, अनुभव है, कि मन विषयों के साथ कितना रम रहा है, उसको मन और विषयों का नाता क्या है। हमारे जीवन में हम कभी भी उसकी गहनता को प्राप्त नहीं कर सके। आकाश में उड़े हैं और आकाश की गहनता कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो, वैसे मन और विषयों का जो संबंध है उसकी गहनता इतनी है, आप कभी भी उसको पार नहीं कर सकते। जब तक स्वस्वरूप हमारे प्रत्यक्ष नहीं होता है, तब तक हमारे मन और विषयों का संबंध उसका भेद नहीं टूटेगा, उसका संबंध कभी नहीं टूटेगा। वो आत्मस्वरूप ही, हमारा स्वस्वरूप ही उसका सबसे बड़ा उसका उत्तर है। हमारा जो कुछ उसमें से प्राप्त होने वाला जो उत्तर प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर है, वो हमको वहीं से मिलेगा, उसका समाधान वहीं मिलेगा। बाकी मन विषयों से और विषय मन से जुटे हुए भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। विषय का स्वाद चख लिया है तो बस मन भी लालची हो जाएगा और मन भी उसी का ही संग और उसी का ही संबंध चाहेगा, वो अपने तरफ ही नहीं देखेगा। कभी भी विचार भी नहीं आता है, स्वप्न भी नहीं आता है कि मन को विषयों से मैं अलग कर लूं, क्योंकि भटके हुए हैं, जन्म जन्म के भटके हुए हैं मन के साथ, विषयों के साथ, विषयों को। जब भी देख रहे हैं साधक के रूप में, जब त्यागी सन्यासी साधु होकर के, साधु ही साधक है, साधक होने के कारण उसका नाम साधु है, जो साधन करने वाले हैं, साध्य को प्राप्त करने के लिए तो साधु हुए। वो आत्म प्राप्ति वही हमारा लक्ष्य है, शरीर साधन है, पहुंच रहा है लक्ष्य पर। अपने भौतिक संबंधों का नाता तोड़ करके जो हमारे स्वरूप, हमारा सूक्ष्म, हमारी सूक्ष्मता है, वहां गहनता तक हमको पहुंचने की इच्छा है। जब जिज्ञासा होगी तभी जा करके इच्छा होती है। आत्म जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारे आत्म का स्वरूप, हमारा स्वस्वरूप, हम स्वयं कैसे हैं। जब तक हमारा दर्शन हमको नहीं होता है, हम ही हमारी आंखों से अंधे, तब तक जा करके हम भौतिकता को जीवन से अलग कभी नहीं कर सकेंगे। जब भी आपके मन में इच्छा होती है, संकल्प होता है कि अब मन को विषयों से अलग करना है, तब जा करके सबसे पहले अपने ही अंदर दृष्टि करनी पड़ेगी, क्या है क्या नहीं। अंदर दृष्टि करोगे तभी बाह्य दृष्टि हमारी समाप्त होगी। बाहर के भटकन और बाहर का जो हमारा संबंध है, नाता है, वो जब तक बंधा रहेगा, नहीं टूटेगा, तब तक स्वस्वरूप के लिए अंतर्यात्रा हमारी कभी नहीं बनेगी। उद्धव जी का प्रश्न भी बड़ा विलक्षण है, लेकिन प्रभु अभी अपने मुख से उत्तर नहीं दे रहे हैं। भगवान ने स्वयं ही कहा, सनकादिक ऋषियों ने जब ये प्रश्न किया, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी उसका उत्तर नहीं दे सके। अब देखो, मन और विषय को अलग करना है, कौन करेगा, किसके पास वो शक्ति है, किसके पास वो बल है, कहां से उसका मार्गदर्शन लेंगे कि मन और विषयों को अलग करें। भगवान ने यहां पर हंसावतार की कथा कही है, हंस ही निरक्षर विवेक उसके पास है, वही जानता है। जो मन इस मानस सरोवर में भटक